परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सब तैयार हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एस्तर नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ भी मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, हो गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई। शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, ओ यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, 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 यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने जीवन में आनंदित हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इन दिनों एस्तेर की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो पुराने नियम की एक पुस्तक में से है। और जैसे कि हमने पिछले अध्ययन में देखा है कि एस्तेर की पुस्तक में यहूदियों के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई, क्योंकि हमान सभी यहूदियों को नाश करना चाहता है, परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अद्भुत उपाय निकाले। और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इस पुस्तक के अंतिम अध्याय 9 और 10 पर विचार करेंगे। तो आइए इससे पहले हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम सब बैठ करके एक साथ आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम एस्तेर की पुस्तक से अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, उसे समझ सकें और अपने आत्मिक जीवन में लाभ के रूप में ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, किसी प्रकार की समस्याओं में या दबाव में हैं। आप उनकी भी सुधि लीजिए, उनकी भी सहायता कीजिए, ताकि यह समय हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम एस्तेर नामक पुस्तक उसके आखिरी 2 अध्यायों से अध्ययन करेंगे। और पिछले अध्ययन में हमने देखा है कि यहूदियों को नाश करने के लिए हमान ने एक रणनीति बनाई, परंतु वह विफल रहा और उसे उसी बांस पर लटका दिया गया जिसमें वह मोर्दकै को लटकाना चाहता था। आज हम देखेंगे और आज का विषय है पुरीम पर्व की स्थापना। ध्यान दीजिए, पुरीम पर्व की स्थापना। यहूदियों को घात करने का दिन निकट था। अब दिन निकट है, अब क्या होता है, आइए देखें। एस्तेर की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, एस्तेर की पुस्तक 9 अध्याय उसका 1 और 2 पद लिखा है, अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा को आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। उस दिन यहूदी लोग राजा शहर्स के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाएं। कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। मेरे मित्रों, यहूदी आक्रमण से बचने की तैयारी करते हैं। राजा की नई आज्ञा उनकी रक्षा करती है, अतः वे अपनी आत्मरक्षा के लिए सब साधन ले आते हैं। यह एक बड़ी रोचक बात है कि यूनानी इतिहासकार हेरोजेटस लिखता है कि 480 ईस्वी पूर्व में जब शयर्स यूनान से पराजित होकर लौटा, तब उसकी रानी अमेस्त्रिस शिथिल और प्रतिशोध वाली स्त्री थी। वह रानी एस्तेर ही थी, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को वह शिथिल और प्रतिशोध लेने वाली ही लगेगी। उसने हमान के दुराचारों का दमन करने का कदम उठाया था और अपने समुदाय को उस समय बैरियों से बचाया था। कुछ लोगों का विचार है कि यह न्यायालय की निर्दयता थी, पाशविकता थी कि हिटलर के अनुचरों को बंदी गृह में डाला जाए, परंतु सच तो यह है कि उसके अनुचर उच्च कोटि के धूर्त थे। उन्होंने यहूदियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया वह पूरी तरह पाशविक था। बाहर के लोगों को हिटलर के साथियों के साथ ऐसा व्यवहार कठोरता प्रतीत होता है, परंतु जो भीतरी कहानी जानते हैं उन्हें यह न्याय संगत लगता है। मेरे मित्रों, आइए हम एस्तेर 9 अध्याय उसके 3 और 4 पद को पढ़ें। लिखा है, वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मोर्दकै का भय समा गया था। मोर्दकै तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कृति सब प्रांतों में फैल गई, वरन उस पुरुष मोर्दकै की महिमा बढ़ती चली गई। अब ध्यान दीजिए कि अब उनका अपना आदमी मोर्दकै राजा के दाहिने हाथ बैठा था। यहूदियों को घात करने की मंशा रखने वाला हामान नाश हो चुका था। वही दरबार जो कभी यहूदियों को मृत्यु के मुंह में धकेल चुका था, अब उनका संरक्षक बन गया था। आज परमेश्वर का सिंहासन हमारी रक्षा करता है। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, 8 अध्याय उसके 33 और 34 पद में, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखिए परमेश्वर कैसे हमें उचित ठहराता है। पहला है, मसीह यीशु मर गया। दूसरा, वह फिर जी उठा। और तीसरा है, वह परमेश्वर की दाहिनी ओर है। और चौथा, वह हमारे लिए निवेदन करता है। मित्रों, यही कारण है कि विश्वासी पर कोई दोष नहीं लगा सकता। कैसी अद्भुत बात है। आज महिमा में एक मनुष्य है जो आपकी भावनाओं को ज्यों का त्यों समझता है। वह समझता है कि मुझे कैसा लग रहा है और वह वहां उपस्थित होकर हमारे लिए निवेदन करता है। हम पापियों के लिए अब स्थिति बदल चुकी है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 14 से 16 पद में लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे पास एक ऐसा मुक्तिदाता है जिसे संसार ने तुच्छ जाना है। उसके बारे में बहुत सी निंदा की गई है और घटिया बातें की जाती है, परंतु मेरे मित्रों, वह महिमामय पुरुष है। वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह तराई की शोषण है, वह एकमात्र ही मनोहर है, वह 10,000 में परम प्रधान है। एक दिन वह फिर से आएगा। हमें उसके सामने घुटने टेकने का प्रयास कर लेना चाहिए, उसकी स्तुति आराधना करना चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन वह हमारे लिए अधिकाधिक मनोहर होता जाए। क्या आप आज पिछले एक वर्ष की तुलना में अधिक आनंदित हैं? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं पिछले 10 वर्षों के पूर्व की अपेक्षा आज कहीं अधिक आनंदित हूं। मेरे मित्रों, अब मान लीजिए कि एस्तेर के युग में आप वास करते हैं और कुछ यहूदी कहते हैं, मैं इस नई राजाज्ञा पर विश्वास नहीं करता। मेरे विचार में राजा ऐसा भला नहीं हो सकता कि ऐसी आज्ञा दे। मैं तो अपनी ही सुरक्षा का प्रबंध करूंगा। मैं खाई खोदकर उसमें छिप जाता हूं। मैं अपने लिए किला बनवा लेता हूं। परंतु सच तो यह है मेरे मित्रों कि राजा की दूसरी आज्ञा न मानने वालों के लिए मृत्यु निश्चित थी। ध्यान दें, एक यहूदी को राजा के संदेश में विश्वास करना आवश्यक था। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के संदेश सुसमाचार में विश्वास करना आवश्यक है। सुसमाचार का अर्थ है शुभ संदेश। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 3 और 4 पद में हमें परमेश्वर का संदेश सारांश में दिया गया है। लिखा है, मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। परमेश्वर ने इस संसार में एक राजाज्ञा निकाली कि मनुष्य कर्मों से नहीं विश्वास से उद्धार पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में यीशु के लिए लिखा गया है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। पेंतिकोस्त के दिन पत्रस के संदेश का मुख्य बल यही था कि मसीह यीशु के द्वारा पापों की क्षमा है। आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 2 में। मेरे प्रियो, सुसमाचार ही आज मनुष्य का उद्धार करता है या उद्धार दे सकता है। सुसमाचार हमारे लिए किया गया है, किसी का काम है, या आपके और मेरे लिए परमेश्वर का निवेदन नहीं कि हम कुछ करें। इसके विपरीत सुसमाचार हमारे लिए किया गया परमेश्वर का काम है। यदि हम अपना विश्वास और भरोसा मसीह यीशु में नहीं रखते तो हमारे लिए कोई आशा नहीं है। आप कुछ बुरी आदतों को त्याग कर दें, आप बुराई से मुंह मोड़ लें, आप आराधना में नियमित रूप से जाने लगें, आप प्रभु यीशु मसीह के निकटता में आने का प्रयास करें, आप प्रभु भोज लें, परंतु आपको संतोष प्राप्त नहीं होगा। सच्ची शांति पाने का एकमात्र उपाय है परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके उस पर विश्वास करें। उस पर विश्वास करना ही उद्धार पाना है, उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है। मेरे मित्रों, जिन यहूदियों ने राजा की आज्ञा पर विश्वास नहीं किया उन्हें कोई आशा नहीं थी, और लिखा है कि जिन यहूदियों ने राजा की आज्ञा पर विश्वास किया वे आनंद से भर गए। क्यों? क्योंकि राजा की आज्ञा में उनके लिए विश्वास ने उन्हें मुक्ति दिलाई। एस्तेर की पुस्तक 9:20 में हम पढ़ते हैं, इन बातों का वृतांत लिखकर मोर्दकै ने राजा शहर्स के सब प्रांतों में क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजी। ध्यान दीजिए, कुछ लोगों का प्रश्न है, एस्तेर की पुस्तक किसने लिखी? मेरे विचार में इस पद से संकेत मिलता है कि मोर्दकै इसका लेखक है। एस्तेर के पुस्तक 9:26-27 में आगे हम पढ़ते हैं, इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपने संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनमें मिल गए थे यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रति वर्ष उसके ठहराए हुए समय में वे ये 2 माने। ध्यान दीजिए, आज पुरीम का पर्व रूढ़िवादी यहूदी ही अपने आराधनालय में मनाते हैं। यह एक हर्षोल्लास का पर्व है। आराधना के अंत में वे एस्तेर की पुस्तक पढ़कर समापन करते हैं। जब वे एस्तेर की पुस्तक पढ़ते हैं तब जब जब हमान का नाम आता है तब तब वे उसके नाम पर थूकते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि ये भी कहते हैं उसका मिट जाए या वह श्रापित हो। अगले दिन वे आनंद की आराधना में एकत्र होते हैं क्योंकि यह पर्व उस सत्य का या घटना का चिन्ह है कि परमेश्वर ने उन्हें मुक्ति दिलाई और वे उसके बाद के मुक्ति कार्यों पर भी उल्लेख करते हैं, जैसे जर्मनी के अत्याचारों से मुक्ति पाना। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय कहा था उत्पत्ति के पुस्तक 12:3 में, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। एस्तेर की पुस्तक 9:28 में लिखा है, और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए गए और माने जाएंगे और पूरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 10 के इस प्रकाश में समाप्त होती है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं एस्तेर की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1-3 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, राजा शयर्ष ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया। उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों और मोर्दकै की उस बढ़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? यहूदी मोर्दकै शयर्ष राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। मेरे मित्रों, आपके और मेरे पास एक ऐसा उद्धार करता है जो एक दिन इस संसार में शांति ले आएगा। पूरीम के पर्व पर यहूदी 3 प्रार्थना पढ़ते हैं। पहली प्रार्थना में वे यहोवा को धन्यवाद देते हैं कि उसने उन्हें योग्य जाना। दूसरी प्रार्थना में वे उनके पूर्वजों की रक्षा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और तीसरी प्रार्थना में वे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने उन्हें एक और पर्व मनाने के लिए संभाल कर रखा है। हम विश्वासी जन फसह के पर्व में आत्मिक अर्थ देखते हैं। पहला क्रुंथियों की पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस कहता है कि मसीह हमारा फसह है जो हमारे लिए बलि चढ़ाया गया, वह हमारे लिए परमेश्वर का उद्धार है। पुरीम के पर्व में हम परमेश्वर का संरक्षक सामर्थ को देखते हैं, उसका ईश्वरीय विधान, उसकी प्रभुता, जैसा कि नीति वचन वाला कहता है, नीति वचन के पुस्तक 16 अध्याय के 33 पद में, चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। वह अपनी प्रजा इसराइल की रक्षा करेगा, वह अपनी कलीसिया की रक्षा करेगा, वह अपने विश्वासियों की भी रक्षा करेगा, वह दूर दूर तक उन लोगों की रक्षा करेगा जो उसके नाम में परमेश्वर के पास आ जाते हैं। आज की पीढ़ी के लिए यह एक दुखद बात है कि वह अधिकांश विश्वासी एक दूर के ईश्वरीय विधान को समझते हैं। वे परमेश्वर की घनिष्ठता में नहीं रहना चाहते, अर्थात नहीं सीख पाए हैं, उसके वचन का पालन करना नहीं सीख पाए हैं। मेरे मित्रों, वह आपको अपनी आंखों से लेकर चलना चाहता है। हमें आज उसके निकट आने की आवश्यकता है। अधिकांश विश्वासी परमेश्वर के दूरस्थ विधान को ही जानते हैं, जो उन लोगों को जो उसकी अगुवाई में रहना नहीं चाहते दूर ही से लेकर चलता है। आज अनेक विश्वासी अपनी इच्छा के अनुसार ही चल रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सूरज चमक रहा है और मार्ग के पत्थर हटा दिए गए हैं। वे सोचते हैं कि वे स्वयं ही सब कुछ कर सकते हैं, अतः वे परमेश्वर को नहीं निहारते। तब एक दिन आंधी चलने लगती है, लहरें गरजने लगती हैं और मार्ग में अंधेरा छा जाता है। तब वे उसे पुकारने लगते हैं, हे प्रभु मुझे बचा, मैं नाश हो रहा हूं, मुझे मार्ग दिखा। संकट से उभर आने के बाद वे कहते हैं, प्रभु ने मेरी अगुवाई की। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपने ईश्वरीय विधान से आपको संभाला है, और सच तो यह है कि आप उसकी इच्छा में नहीं थे। आज जीवन और मन के समर्पण की बहुत ही चर्चा है। मैं यह सुनते सुनते ऊब गया हूं, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दो। मेरे प्रियो, मैं आपसे यह नहीं कहता, आप इसी पल घुटना टेक कर अपना जीवन और मन परमेश्वर को दे दें, परंतु कल आप पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा के बाहर हो सकते हैं। उस समय आप फिर से ईश्वरीय विधान द्वारा संचालित होंगे। आप इस समय जहां भी हैं वहां से निकलकर परमेश्वर की इच्छा में आ सकते हैं। उसकी इच्छा में चलना कैसा आनंददायक है। एक पल ही नहीं, प्रतिपल प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में खोजना है। तथापि यदि आप परमेश्वर के संबंधों से निकल जाते हैं तो भी आप उसके ईश्वरीय विधान की पकड़ से बाहर नहीं है। परमेश्वर पार्श्व में खड़ा अपनों की चौकसी करता है। आप चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, वह चाहता है कि आप उसके निकट पाए जाएं, क्योंकि उसने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में रचा है और वह चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। एक बार मनुष्य पहला आदम, उसने पाप किया और उसके जीवन में पाप आ गया, परंतु उसने अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा ताकि मुझे और आपको उस पाप के दलदल से बाहर निकाले। आज लोग अपने जीवन में उद्धार, आनंद और शांति की खोज में पड़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि उनका जीवन शांति से भर जाए, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं होता है। परंतु प्रभु यीशु के द्वारा आपके जीवन में वह शांति है। क्या आज आप उसकी ओर देखने के लिए तयार हैं? क्या आज आप चाहेंगे कि यीशु आपके जीवन में आ जाए, आपके उन बीमारों से, आपके उन बुराइयों से आपको छुटकारा दे? यदि हाँ, तो आज आप भी प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं, अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर सब मनोजाति से प्रेम करता है। वह चाहता है कि आप आनंद पाएं। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और इसके साथ ही एस्तेर की पुस्तक का भी समापन होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि एस्तेर की पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपने इस बात को अवश्य ही देख लिया है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा बड़े अद्भुत रीति से करता है। जी हाँ, आइए आज हम सब भी अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं, उससे आशीष मांगे और उसमें बढ़ते जाएं। आज के इस अध्ययन के द्वारा, इस पुस्तक के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।